محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے خالق ہیں اور مالک ہیں، وہ ہمارے رب ہیں اور ہمارے حاکم ہیں، وہ ہمارے معبود ہیں، ان کا پہچاننا، ان کا تعارف حاصل کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے حبیب سے محبت کرنا، ان کی کتاب سے محبت کرنا، کتاب پر ایمان لانا، سارے پیغمبروں پر ایمان لانا، یہ ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ جس نظام کی انہوں نے اطلاع دی ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، پھر آخر میں امام الانبیاء آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، تو پھر ان کا حق ادا کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حق ہوتا ہے، بلکہ سب سے بڑا حق اللہ ہی کا ہے۔ رائٹس جو ہوتے ہیں، سب سے زیادہ، سب سے اہم، سب سے پہلے، سب سے بڑا وہ اللہ کا حق ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اس کے بعد ماں باپ آتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے، پھر بیوی اور بچے ہوتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے، پھر بھائی بہن ہوتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے، پھر رشتے دار ہوتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے، پھر پڑوسی ہوتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے، پھر عام مسلمان ہوتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے، پھر مسلمان اور مسلم یعنی عام انسان ہوتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے، پھر جتنے جانور ہم سے متعلق ہوں گے ان کا حق بھی ہوگا۔ حقوق کی تدریج ہے، درجہ بندی ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو جانا جائے، پہچانا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے خالق ہیں میرے دوست، پیدا کرنے والے ہیں۔ پیدا کرنا ایک عجیب چیز کا نام ہے۔ پیدا کرنا چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، اس وجہ سے پیدا کرنے کا مطلب بھی سمجھنا آسان نہیں۔ اللہ ہی اکیلے خالق ہے اور کوئی خالق نہیں، اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، مخلوق میں سے کوئی خالق نہیں ہے۔ دیکھیے خلق کیا ہے، یہ ایک عجیب چیز ہے۔ مخلوق معدوم ہے، یعنی نہیں تھی، عدم میں تھی، ولم یکن شیئا مذکورا، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کچھ بھی نہیں تھا، پورے مخلوق معدوم تھی۔ تو معدوم چیز میں، معدوم مفہوم کو، جو مخلوق تھی وہ ایک حقیقت ہے جو سمجھی جا سکتی تھی، صرف وجود نہیں تھا اس کا۔ معدوم کا مطلب یہ کہ اس کو وجود نہیں، لیکن اس کا جو مطلب ہے، اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہے، اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ کرسی ایک مفہوم ہے، یہ میٹیریل الگ چیز ہے، جس چیز سے بھی یہ بنی ہو، لکڑی کی ہو کہ پلاسٹک کی ہو کہ اسٹیل کی ہو کہ کسی بھی چیز کی ہو، لیکن کرسی نہ لکڑی کا نام ہے، نہ پلاسٹک کا نام ہے، نہ اسٹیل کا نام ہے، کرسی تو ایک مفہوم ہے۔ جب یہ شیپ دیں گے کسی بھی چیز کا، وہ کرسی کہتے ہیں۔ تو انسان ہو، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، پوری کہکشائیں، فرشتے، جنات، درندے، چرندے، پرندے، درختوں کا نظام، حیوانات کا نظام، پتھروں کا نظام، یہ سب جو ہے کچھ بھی نہیں تھی، ان کے مفاہیم تھے، مفہومات تھے۔ ان مفہومات کو اللہ پاک اپنے ناموں سے اور اپنے صفتوں سے ظاہر کرتے ہیں۔ ظاہر اللہ ہی کا نام ہوتا ہے تو وہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اور ظاہر اللہ کی صفت ہوتی ہے، وہ مفہوم اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ خلق میں وہ چیز ہوتی ہے، خلق میں خالق جو ہوتا ہے وہ وہی اسی خالق کی وجہ سے ہی مخلوق کا ظہور ہوتا ہے، بغیر خالق کے نہیں ہو سکتا وہ. جیسے جہاں مخلوق ہوگی وہاں خالق ہونا ضروری ہوتا ہے، جہاں مخلوق ہوگی وہاں خالق، کیونکہ مخلوق کا ظہور ہی خالق سے ہے. مخلوق کے بغیر خالق کے بغیر مخلوق آ جائے گی کیسے کہیں بھی، اور کسی بھی قسم کی ہو، کوئی ہو، اچھی بری سے بحث نہیں رہتی. جب مخلوق اچھی بری تو شریعت کے انتظام کے تحت تقسیم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنے مطلب مطالب ہیں، مفہومات ہیں، جب وہ ظاہر کریں گے ان کے لیے سب اچھا ہی اچھا ہے، خیر ہی خیر ہے. بیادی کا خیر کا یہی مطلب ہوتا ہے، اس لیے بیادی کا شر نہیں بولتے اللہ تعالیٰ کے، حالانکہ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن شر ہماری طرف منسوب ہو کر وہ شر شر ہوتا ہے، ان کی طرف کوئی چیز منسوب ہو کر شر نہیں ہوتی. اسی وجہ سے خالق جو ہے وہ مالک ہوتا ہے، پوری کائنات کا، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک جو ہے وہی ہے. خالق جو ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، اس پر حکم اسی کا چلتا ہے، ذرے ذرے پر حکم اسی کا ہوگا، کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا. اسی وجہ سے انسانوں پر بھی ان کا حکم چلتا ہے، ہم ان کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے مرتے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے مرتا ہے، اللہ کے حکم سے جوان ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے مرد بنتے ہیں، اللہ کے حکم سے عورتیں بنتی ہیں، کوئی اپنی مرضی سے مرد نہیں پیدا ہوتا، کوئی اپنی مرضی سے عورت نہیں پیدا ہوتی، کوئی خوبصورت نہیں پیدا ہوتا اپنی مرضی سے، کوئی بدصورت نہیں پیدا ہوتا اپنی مرضی سے، کوئی تندرست نہیں پیدا ہوتا اپنی مرضی. تندرست ہونا، بیمار ہونا، کالا ہونا، برا ہونا، خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، زندہ ہونا، بوڑھے مر جانا، جوان ہونا، بوڑھا ہونا، اس میں حکم اللہ کا ہوتا ہے، اللہ حکیم ہے. جو خالق ہوگا وہ مالک ہوگا، جو وہ مالک ہوگا وہ حاکم ہوگا، جو حاکم ہوگا وہ رب ہوگا. اس وجہ سے ربوبیت اللہ پاک کی، پوری مخلوق کے رب اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہوتا، اللہ پاک ہی رب ہے، لا رب الا اللہ. اور ربوبیت میں نفع و نقصان کے سارے امور ہوتے ہیں. رب صرف روٹی دینے کا نام نہیں ہوتا، رب تو یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت کی تکمیل کرنا. اسی وجہ سے ربوبیت میں ہی بچے سے لے کے اس کو بڑا کرنا ہے. تربیت کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کے اندر جتنی استعداد ہے، جو کیپیسٹی اس کی ہے، اس کو مرحلہ بمرحلہ دھیرے دھیرے کر کے تکمیل تک لانا. انسان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بچے بننے کی، بچے کے بڑے ہونے کی جو استعداد ہے اس کو وہاں تک لے کے آنا ربوبیت میں ہی ہے. اس میں کھانا پینا بھی آ ہی گیا، اس میں آکسیجن بھی آ گیا، اس کی اور دیگر جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے تو اس کو آنکھیں دی گئی، اس کو سننا چاہیے تو اس کو کان دیے گئے، اس کو بولنا چاہیے تو اس کو گویائی دی گئی، اس کو پکڑنا چاہیے تو اس کو ہاتھ دیے گئے، اس کو چلنا چاہیے تو اس کو پیر دیے گئے، اس کو کھانا چاہیے تو اس کا کھانا بنایا گیا، اس کھانے کا تقاضا اس میں بھوک کی شکل میں رکھا گیا، اس کو پانی چاہیے تو پانی بنایا گیا، پانی کا تقاضا پیاز کی شکل میں رکھا گیا، پھر وہ کھانا پہنچانا، پھر وہ پانی پہنچانا، پھر لباس پہنچانا، اس کو آرگن چاہیے اس کا، اس کو زندہ رہنے کے بعد دل دھڑکنا ہے تو دل دیا، اس کا دھڑکن دیا، اس کو لیور چاہیے تو لیور دیا، اس کو کڈنی چاہیے تو کڈنی دی، اس کو اسٹمک چاہیے تو اسٹمک دیا، آرگنس جتنے ہیں وہ دیے ظاہر کے باطن کے، پھر اس کو مشاعر دیے، احساسات، سونا چکھنا، یاد کرنا، یہ سب جتنے بھی ہوتے ہیں، حافظہ، خیال، تصور، اللہ پاک کے دیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے میں اور آپ اور ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں، ہر وقت محتاج ہوتے ہیں، ہر آن محتاج ہوتے ہیں، اور محتاج ہی رہیں گے. مخلوق کا احتیاج جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ایون جنت میں جا کے بھی نہیں ختم ہوتا، آخرت میں ختم ہوگا، نہ قبر میں ختم ہوگا، نہ آپ میں، نہ اس سے پر. مخلوق خالق کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، وجود ہی نہیں ہو سکتا، وہی قیوم ہے اپنی پوری کی پوری مخلوقات کا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی قائم رکھنے والا، ہر چیز کا قیام اسی سے. اللہ پاک کی توجہ ختم ہو جائے چیز ختم. خلق کو سمجھانے کے واسطے خیال ہے، خلق کیا ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے واسطے خیال ہے. अब अपने ख्याल घोड़े घोड़े का ख्याल लाइए, कोई गाड़ी का ख्याल लाइए, ख्याल लाते ही गाड़ी आपके दिमाग में कायम हो जाए। कैसी भी गाड़ी हो, चाहे आप ऑफिस की हो चाहे न हो, कोई लग्जरी गाड़ी हो, आपके दिमाग में आ, अब आप उसके कईयों में जब तक आप उसको सोचेंगे वो है। सिर्फ ये है कि हमारे ख्याल में तखय्युल होता है, अल्लाह तबारक व तआला के इरादे में तखय्युल नहीं होता, हकीकत हो जाती है, ये फर्क है। बाकी हमारे ख्याल के अव्वल भी हम, आखिर भी हम, जाहिर भी हम, बातिन भी हम, वल अव्वल वल आखिर वल जाहिर वल बातिन, हमारे ख्याल के मुहीत भी हम, अहाता हम करते हैं उसका, ख्याल का अहाता हमारा ही रहता है। अल्लाह पाक हर चीज को मुहीत है, हर चीज के अव्वल हैं, हर चीज के आखिर हैं, हर चीज के जाहिर हैं, हर चीज के बातिन हैं। अल्लाह ताला साथ होते हैं अपने मखलूक के, वह महाकुम है ना महाकुम, वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं तुम रहो, इन्हीं के मस्जिद में रहोगे तो साथ हैं, तारत खाने में रहोगे तो साथ नहीं है, अगर साथ नहीं होंगे तो तारत कैसे करोगे, उनके साथ हुए वक्त कोई तारत कर नहीं करता। अभी ये बोलते हैं अल्लाह ने हजर आए बोलते तारत खाने में भी रहता है, बेवकूफों को यही नहीं मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक के साथ है कैसा, मखलूक कायम होती है अल्लाह के साथ, इसी वजह से मैं और आप और सारी मखलूक अल्लाह पाक की मोहताज होती है, अल्लाह किसी के मोहताज नहीं, मखलूक सब उनकी मोहताज, मखलूक अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकती, अल्लाह मखलूक के बगैर सब कुछ कर सकते हैं। जब ये हकीकत आदमी पर खोली जाती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ही लायक इबादत है, इलाह फिर वही है, अल्लाह ही इलाह है, क्योंकि इलाह होने के लिए ये सब सिफात चाहिए, इलाह वो होगा जिसमें ये क्वालिटी हो, ये सिफात हो, और वो अल्लाह के अलावा किसी में नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं होगा, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी जाती है, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह को समझाया जाता है कि इलाह अल्लाह ही क्यों है। कलमे की हकीकत कलमे आ गई, कलमे में तो कोई हकीकत नहीं निकली ना हमारे को बताए, कलमे में ये सारी हकीकत होती है तो ही मिला होता है, उसे बोलो मिला हो ही नहीं सकता। तो जब वो माबूद हो गया तो फिर सरेंडिंग आ गई, तो फिर क्या करना चाहिए, इसका मतलब यह कि फिर आपको अपनी मर्जी खत्म करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत देने का मतलब, अल्लाह की तरफ दावत देने का मतलब, अल्लाह के बंदे बनने की दावत देने का मतलब होता है कि जब तुमको अल्लाह समझ में आ गए तो फिर जो तुम्हें मर्जी दी गई वो इम्तिहान के लिए दी गई है, लिहाजा इस इम्तिहान में कामयाबी ये है कि अपनी मर्जी रखने के बावजूद अपनी मर्जी छोड़ देना। सारी मखलूकात में इम्तिहान का इम्तिहान इंसान का है और जिन्नात का है, और इम्तिहान असल इस चीज का है कि कौन अल्लाह को अल्लाह मानता है और कौन अपने को खुद मानता है। इसलिए जो आदमी अल्लाह पाक के माबूद होने के अकीदे के साथ अपने को सरेंडर नहीं करता वो अपनी खुदाई को अल्लाह के सामने खड़ा करता है। अफ़राइत मन तख़र इलाहु हवाहु, क्या आपने उस आदमी को देखा कि जिसने अपने ख्वाहिश को अपना माबूद बनाया हुआ है, मेरे जी में जो आया, मेरे मन में जो आया, मेरी समझ में जो आया, मेरी राय में जो आया, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, जो मैं को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर ले उसने शरीक कर दिया अल्लाह के साथ। सिर्फ बुतों की पूजा का नाम शिर्क नहीं है, अपनी मर्जी चलाने का नाम शिर्क है असली, क्योंकि जिसने अल्लाह की उलूहियत को तस्लीम कर लिया, अल्लाह के खालिक होने को, मालिक होने को, हाकिम होने को, रब होने को, मुइज होने को, मुदिल होने को, नाफे होने को, दार होने को, राफे होने को, हाफिज होने को, तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करने का इरादा कर लेना, यह है ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लेना। ला इलाहा इल्लल्लाह को सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि एक नजरिया होता है, किसी भी नजरिए के अंदर बहुत सी बातें होती हैं लेकिन उनवान उसका बहुत छोटा होता है, उसके जरिए से उसकी पब्लिसिटी की जाती है। कम्युनिज्म एक पब्लिसिटी का उनवान है, कैपिटलिज्म एक उनवान होता है उसका, उसके पीछे पूरा सिस्टम होता है। ऐसे अल्लाह के इलाह होने का आपकी दावत एक निज़ाम की दावत होती है, पूरे सिस्टम की दावत होती है, एक ऐसी हकीकत होती है वो कि जो आपके मानने पर भी है नहीं मानने पर भी है। अगर कोई नहीं माना तो ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए नहीं है ये सब, फिर भी वही है, उसके अगेंस्ट में मान लिया तो भी ये मतलब नहीं होता कि उसके लिए नहीं है, फिर भी वही है। जितने अल्लाह के अलावा गैरों को पूजने वाले होते हैं
हम तो चूंकि इंडिया में रहने वालों को ये बात बहुत अच्छा समझ में आती है कि किस किस तरह पूजा जाता है, कैसी मूर्तियां बनी हुई होती हैं। पाकिस्तान वालों को तो जल्दी नहीं समझ में आता है, हम तो रात दिन देखते रहते हैं, हमें बहुत जल्दी समझ में आता है। हमारे पास एक काली मूर्ति होती है तिरुपति के अंदर, उसकी लोग पूजा करते हैं हर साल, और कहते हैं कि साहब कारोबार पूरा ऐसे चलता है, उसकी पूजा की जाती है। कोई लक्ष्मी की पूजा करता है, कृष्ण की करता है, कोई गणेश की करता है, कोई राम की करता है, कोई लक्ष्मण की करता है, कोई रावण की करता है। एक रावण वो है तुम्हारा, राहुल वाला वो नहीं, ये दूसरा राम के मुकाबले में है। तो इन लोगों का अकीदा होता है कि इनसे नफा होता है। किसी को पानी पानी से मुतालिक किया हुआ है, जिसकी पूजा करेंगे तो बारिश होगी। किसी को रोजी से मुतालिक किया हुआ है, इसकी पूजा करेंगे तो रोजी मिलेगी। किसी को कारोबार से मुतालिक किया हुआ है, इसकी पूजा करेंगे तो कारोबार। तो अब अच्छा होता भी है कि जो उनकी पूजा करता है उनके कारोबार चलते रहते हैं। उनके दिमाग में ये बात आती है कि हम इसकी पूजा करते हैं इसलिए चल रहा है। अल्लाह ताला की आदत यह है कि मेरे अलावा किसी की तरफ तो मंसूब करेगा तो हकीकत तो नहीं बदलेगी, मगर दिखा दूंगा वैसे ही जैसे तूने अकीदा बनाया, पकड़ूंगा बाद में, बताइए कहां से कर रहा था तेरा काम। क्योंकि अनाअंदे जन ने आप दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूं, ये वहां पर लाजिक ये चलती है। क्योंकि उसने कहा कि काली मूर्ति को पूजा करने से मेरा कारोबार चलता है, तो वो पूजा करता रहता है, कारोबार चलता रहता है। ईमान गया, और पूजा कारोबार चलाने वाला कौन है? वो तो अल्लाह ही। काली मूर्ति से उसमें क्या ताल्लुक? कितनी दुनिया में लोग हैं जो जानते भी नहीं काली मूर्ति, कितने लोग हैं जो उसको पहचानते भी नहीं है, तो फिर भी कारोबार चल ही रहा है, उसका भी कारोबार अल्लाह ही चलाते हैं। काली मूर्ति से क्या ताल्लुक? उसके ऊपर पेशाब करोगे तो फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर क्या हाथ है कारोबार चलाने नहीं चलाने। तो मूर्ति ही की जगह की बात नहीं है, इसके अलावा जितनी भी चीजें होंगी उनकी तरफ मंसूब करने से निस्बत हमारी अपनी तरफ से है, हकीकत से नहीं है। हमने फर्जी तौर पर निस्बत लगाई है, हमारा पन्ना कारोबार से, हमारा पन्ना जॉब से, हमारा पन्ना हमारे शोहर से, हमारे बाप से, किसी से नहीं। सारी चीजें अल्लाह पाक करते हैं। जिसने जितना ईमान अपना बना लिया उतना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब करने के अंदर पक्का हो जाता है, और जितना जो कमजोर हो गया उसकी कमजोरी रहती है, कल कयामत में पकड़ में आ जाएगी। इसलिए रब अल्लाह को मानना, उस पर जमना जो बोला जाता है इन्ना लजीना कालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तकामू, यही मतलब है कुल रब्बी अल्लाह थुम्मा इस्तकीम, फरमा मेरा रब अल्लाह है बोलो फिर जम जाओ उस बात पर, हर चीज को फिर अल्लाह की तरफ लगाओ। अल्लाह का गैर खुद कुछ नहीं कर सकता अपने लिए, तो तुम्हारे लिए क्या करेगा भाई? इसीलिए ना गैर का खौफ बाकी रहना चाहिए मुवाहिद के दिल में, ना गैर से कोई तमा रहनी चाहिए। तो मखलूक के तासुर से अपने को खाली करना, ये तौहीद की हकीकत है, ईमान की हकीकत है। वो कहाँ है हमारे पास? मखलूक के तासुर से अपने आप को निकालना, वो ईमान में है। इसीलिए इस ईमान पर मेहनत चाहिए होती है, और इसीलिए इसके हक को पहचानना होता है कि जब बंदे ने ऐसा मान लिया तो फिर मैं करूं क्या भाई? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बोला मैं सब, ये मेरे नुमाइंदे हैं, मैंने मखलूक में इनको बिठाया है मेरी तरफ से, ये मेरी जगह पर है, ये मेरे खलीफा हैं, ये मेरे रसूल हैं, भेजा है मैंने इनको, मेरे नुमाइंदे हैं, इनकी मानना मेरी मानना है, इनकी नहीं मानना मेरी नहीं मानना है, इनको खुश करना मुझे खुश करना है, इनको नहीं खुश करना मुझे ना खुश करना है, इनको खिलाना मुझे खिलाना है, इनको पिलाना मुझे पिलाना है, इनको पहनाना मुझे पहनाना है, इनके हाथ पर बैठ करना मेरे हाथ पर बैठ करना है, इनके मुंह से जो निकलता है वो मैं ही बोलता हूं, माय इंतफानिल हवा इन हो इलावा इन लजीना युबायूना किन्नमा युबायूना, जो आपके हाथ पर बैठ कर रहे हैं अल्लाह ही के हाथ पर कर रहे हैं। इनका कंकर फेंकना दुश्मन की तरफ, मेरा ही फेंकना है, हमारा रमई कही रमई तो वाला किन्न रमा, मेरे नुमाइंदे हैं, जो मेरे साथ होना है वो इनके साथ होगा, सिवाय अबूदियत की बंदगी के जो तरीके मुकर्रर होंगे वो इनके साथ नहीं करने के हैं, इत्तेबा पूरी इनकी करनी है। ये मेरी बंदगी कैसे की जाती है ये बताएंगे, तो मेरी बंदगी इनके तरीके पर ही करना है, इनके बताए हुए तरीके पर करना है, क्योंकि ये अल्लाह तो नहीं होंगे, रसूलुल्लाह है। इसीलिए फिर आदमी के जिम्मे अल्लाह पाक की इबादत सबसे पहले आती है। पांच वक्त की नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है दिन में, कोई इससे मुस्तस्ना नहीं है सिवाय पागल के और सिवाय बच्चे के और ना पाकी ना औरत के, इनकी इस्तना है एक्सेप्शन इन पर नहीं। पागल से क्या दवा, पागल से क्या खिताब होगा, उसके बाद अकल ही नहीं, अकल से खिताब होता है। बच्चे से क्या होगा, उसके पास में भी अकल नहीं है ना तमाम है, हकीम ही उसकी अकल है। अल्लाह पाक है इस वास्ते गंदगी से इससे ताल्लुक नहीं हो सकता, इसलिए गंदगी के दिनों में औरत को माफ कर दिया गया, ठीक है तुम नहीं कर सकते काम छोड़ दो। बकरे किसी से माफ नहीं, जाब है ये मशगूलियत है वो मशगूलियत है, बीवी है बच्चे हैं फला फला, इससे पालने वाला तो मैं हूं। नमाजों की पाबंदी है, फिर हकीकत वाली नमाज मिल जाए, फिर अल्लाह पाक किससे खुश होते हैं किससे नाखुश होते हैं वो पहचानो, वो जानो। वही के जरिए से उस चीज को बताया गया, और इल्म असल में उस वही का नाम है जो अल्लाह पाक ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया, इल्म उसी का नाम। जब तक वो मुसलमानों के पास रहेगा मुसलमानों में जहालत का नशा नहीं आएगा, और जब वो नहीं रहेगा तो जहालत का नशा आ जाएगा, और जब जहालत का नशा आ जाएगा तो अल्लाह की मदद हट जाएगी, मुसलमान के साथ अल्लाह की मदद नहीं रहेगी। तो मुसलमान के कॉन्सेप्ट में भी वही का इल्म हकीकी इल्म है, ये नहीं रहा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्म नाज़िल हुआ अल्लाह की अल्लाह पाक की तरफ से, वो इल्म है। बकिया को तो इल्म नहीं बोलते, बकिया फजल है, फनून है, पेट पालने के तरीके हैं। इल्म तो वो है जो वही से हुआ, उसके अंदर इंसान की जिंदगी के अंजाम को बताया जाता है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की कामयाबी के जो तरीके मुकर्रर किए हैं उनको बताया जाता है, नाकामी किन सूरतों में होती है उनकी तफसीलात होती है, अल्लाह क्या है, अल्लाह के रसूल क्या है, अल्लाह की किताब क्या है, अल्लाह के फरिश्ते क्या है, अल्लाह का रहबी निज़ाम क्या है, अल्लाह की तकदीर क्या है, मौत क्या है, मौत के बाद क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, ये बहस होती है उसमें। और जाहिर है कि ये जितना एजुकेशन के नाम से दुनिया चल रही है उसमें तो ये सब बहसें नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं है, इल्म कायम है। तो इसलिए इल्म सीखना जरूरी है हर मुसलमान के लिए, मर्द हो या औरत, तहकीक का जज्बा आ जाए, पूछ पूछ के चलना आ जाए और डर पैदा हो जाए दिल में, क्योंकि पूछ पूछ के आदमी नहीं चला तो भी काम नहीं कर सकेगा, लेकिन डरे बगैर आदमी जान के करने की कोशिश करेगा तो भी काम नहीं चलेगा। डर में यह है कि हो सकता है ऐसा कर लिया तो चल जाएगा काम, हो सकता है ऐसा चल जाएगा, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा, तेरी घर का समझ में आ रहा, भाई अल्लाह का इल्म है, खेल तमाशा नहीं है, अपना गैस नहीं चला सकते इसमें, अपनी अपनी जाती अकल नहीं चला सकते इसमें, अकल को इस्तेमाल करना है मगर सही इल्म को लेकर उसको उसमें अकल इस्तेमाल की जाएगी, ना कि पहले से, क्योंकि इल्म हकीकी तो शुरू ही होता है अकल के बाद से, जहां अकल की हद खत्म होती है वहां से वही की हद शुरू होती है। अकल को क्या मालूम था आखिरत क्या है, कैसे मालूम हो सकता है, अकल को क्या मालूम जन्नत और जहन्नम क्या है, अकल को क्या मालूम तकदीर क्या है, अकल को क्या मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब उतारी उसमें क्या है। अकल की हद जब खत्म होती है तो वही की हद शुरू होती है, इसलिए इल्म का हासिल करना जरूरी है। और अल्लाह पाक से इतनी मोहब्बत हो, इतनी मोहब्बत हो कि आदमी अपना सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए कर दे तो उनकी याद में रहे हमेशा, उनकी रजा की तलाश में, उनके हुक्म की उनकी मर्जी के मुआफ़ करने में, उनकी इताअत में और अल्लाह ताला की याद में, जुबान से भी दिल से भी अपने मशाइख से सब चीज़ों से अल्लाह पाक को याद करने वाला बने। और अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह के इंसान को पसंद करते हैं उस तरह का इंसान बनना, अपने अखलाक, अपने कैरेक्टर, अपने सिफात, हमदर्दी, मुरव्वत, मोहब्बत, लोगों के साथ में सलूक, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, खुद से नहीं पहुंचाना ये तो है ही नहीं, किसी को तकलीफ होने वाली चीज है तो उसको रास्ते से हटा देना, हिमातुल अज़ा अनि तरीक, रास्ते में अगर किसी पत्थर पड़ा हुआ है अंदाजा है कि ठोकर लग जाएगी तो वहां से हटा देना, कोई दरख्त है जिसका जो जिसकी टहनी जो है ना सामने आ रही है, लोग बढ़ गई है, लोग आ रहे जा रहे तो उनको मार लगने का डर हो रहा है, एक नौजवान किसी किसी पर बख्शिश हो गई कि वह लोगों के रास्ते से उसने ब्रांच को काट दिया था, हदीस शरीफ में लोग जहां से गुजरते थे वहां दरख्त की एक टहनी नीचे तक आ गई थी, जब लोग गुजरते थे तो उनको लगता था उसने कहा जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है उसको काट दिया गया, उसका इंतकाल हो गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसकी मग़फ़िरत हो गई इस वजह से कि उसने लोगों को तकलीफ देने वाली टहनी को काट दिया था। हिमातुल अज़ा अन तलब, इसलिए कि इस्लाम में सलामती है और ईमान में अमन है, हिफाजत है। इस्लाम सलामती की तालीम देता है, किसी को तकलीफ देने की नहीं देता, तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती। अखलाक, मोहब्बत, हमदर्दी, दोस्ती, दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी की भी तालीम देता है। जो अल्लाह का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल का जो दुश्मन होगा वो हमारा दुश्मन होगा, उनका जो दोस्त होगा वो हमारा दोस्त होगा। हम जाती दुश्मनी नहीं कर सकते किसी से, जाती दोस्ती नहीं कर सकते किसी से, क्योंकि जब हम किसी और के हो गए तो हमारी सारी फीलिंग्स भी दूसरे की होगी। पाबंद है मोहब्बत करने में भी पाबंद, नफरत करने में भी पाबंद, दोस्ती करने में भी पाबंद, दुश्मनी करने में भी पाबंद, खुशी करने में भी पाबंद, गम करने में भी पाबंद। अपनी मर्जी से खुशी नहीं करेंगे, आज हैप्पी डे है जो चाहे हम कर लेंगे, आज हमारी शादी है जो चाहे हम कर लेंगे, हमारे बच्चे की शादी है, तू कौन होता यार? इसका मतलब इसको कलमा आया ही नहीं। जो अपनी खुशी चलाता है उसको कलमा आया ही नहीं, और जो अपना गम चलाता है उसको भी कलमा नहीं आया। अरे मियाँ हमारा सदमा हमारे सर पे पड़ा हुआ है, तुमको क्या पता है, पहाड़ टूट गए हैं गम के, जाओ अपने काम करो, कहाँ से नमाज आज की, कहाँ से रोजा आज का। अरे आपको अपना गम करने की नहीं होंगे, गम मैं अपनी मर्जी से मनाऊंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, गोश्त नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। भाई तू कौन होता है इस मामले में? गम भी उसकी एक लिमिट है, जैसे मनाओ बोले वैसे मनाना पड़ता, जब मनाओ बोले जब मनाना पड़ता। ये थोड़ी है कि आप हर साल लेके बैठ जाएंगे, हम कोई हादसा पेश आ गया तो नहीं कर सकते, ऐसे तरीके से करेंगे नहीं कर सकते। होगा भाई जब आपको पता चलेगा कि अहले बैत के साथ ऐसा हुआ, इतने सारे जो है ना खानदान नबूवत के लोगों को शहीद कर दिया गया, तो खुशी की तो बात नहीं होती ना जी, मगर एक वाक्य हो गया, अब लेके बैठेंगे क्या उसको? लेके नहीं बैठ सकते, लेके बैठना था तो फिर सरकार की वफात को लेके बैठो, सिद्दीक अकबर की वफात को लेके बैठो, उमर फारूक की वफात को लेके, उस्मान गनी की वफात को, खुलफाए राशिदीन को पूरे, अशरे मुबशरा को पूरे, अज़वाजे मुतहरात को पूरे, सहाबा किराम को पूरे, औलिया अल्लाह को पूरे। अब आपको सुबह से शाम तक तीन दिन चार चार मरतबा एक एक दिन में मौत गम मनाना पड़ता, क्योंकि सब मुस्तैक हैं इसके, देखा जाए तो छोड़ किसको सकते आप? दुनिया का जो बड़े से बड़ा लीडर है उससे बड़ा हमारा कोई बुजुर्ग होता है? दुनिया का जो सबसे बड़ा रिफॉर्मर है, जो सबसे बड़ा फलासफर गुजरा है, जिसने सारी दुनिया को कुछ दिया है, उससे बड़ा हमारा कोई अल्लाह का वली होता है? तो उसका नहीं होना चाहिए, उसकी खुशी नहीं होनी चाहिए, उसका गम नहीं होना चाहिए? उसकी पैदाइश हमारे लिए सबसे ज्यादा छुट्टी का दिन है अगर देखा जाए, उसकी वफात हमारे लिए सबसे ज्यादा गम का दिन है अगर देखा जाए। अब और अल्लाह की मनाते रहो बर्थडे और उसके बाद में डेथ डे, फिर उसके बाद में साहबा के मनाओ, ये बेवकूफ लोग हैं जिनको अभी कलमा ही नहीं मालूम हुआ। कलमे की हकीकत में अपनी मर्जी को खत्म करना होता है, जज्बात को खत्म करना होता है, एहसासात को खत्म करना होता है, फीलिंग को खत्म करना होता है, अपनी मर्जी ना बाहर ना अपनी मर्जी अंदर। इसलिए इंसानियत के साथ में अखलाक से तो पेश आएंगे, लेकिन इन अखलाक से पेश आने के अंदर अपनी मर्जी फिर भी नहीं चलेंगे, और महज अल्लाह तबारक व तआला को खुश करना पेश नजर होना। जिस आदमी के जहन में ये हो कि लोग क्या बोलेंगे, वो आदमी दीन पे नहीं चल सकता, वरना का बंदा नहीं बन सकता। अरे हम ऐसा रहेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा पहनेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसी सूरत बनाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसे काम करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? आप लोगों के बंदे हैं कि अल्लाह के बंदे हैं? इखलास का मतलब होता है महज अल्लाह के लिए करने का जज्बा रहना, किसी भी काम को छोटा हो या बड़ा हो, मखलूक को सामने से हटा देना। इमाम गजाली ने फरमाया कि मखलूक इंसान और पत्थर जब तक दोनों बराबर ना हो जाएं अमल के लिए, जब तक इखलास नहीं आता। पत्थर के सामने, पत्थर को आप फिक्र रखते कि अरे ये मेरे सामने दीवार है, अगर मैं इसके सामने ऐसा रहा तो क्या समझेंगे? नहीं समझ, उसको जहन में नहीं आता कुछ किया है कुछ। अल्लाह पूरी मखलूक का ये हाल होने का है, मेरा दीन है मेरा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अपने हबीब का उम्मती हूं, बस खत्म। सारी चीजों में इखलास आ जाना, और मैं और मेरी जान, मेरा माल, मेरी सलाहियतें, ये अल्लाह ताला की बंदगी में इस्तेमाल हो जाएं, और अल्लाह के बंदों को अल्लाह का रास्ता बताने में इस्तेमाल हो जाएं। दावत है तो मैं अल्लाह के लिए हूँ। इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरा जीना मेरा मरना मेरी नमाज मेरी कुर्बानी। नुसुक के अंदर सारी चीजें आ गई, जितनी माली कुर्बानियां होती हैं सब आ गई, और नमाज के अंदर जानी कुर्बानियां आ गई, और जीना और मरना पूरा आ गया, एहसासात और जज्बात और फीलिंग सब कुछ शामिल हो गया। वो अल्लाह के लिए, जब अल्लाह के लिए है तो अल्लाह ने मुझे जो काम लगाया है वो करना है, मुझे अपना मुझे अल्लाह का बंदा बनना है, उसकी मेहनत करनी है, तो सही मायने में बंदगी आ जाए हकीकत के एतबार से, और ये बंदगी मेरे अकेले में ना आए पूरे बंदों में आ जाए, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है ये, जहन्नम में जाएगी वरना। मैं आपसे तो मोहब्बत करूं और आपका बच्चा पानी में डूब रहा है तो खामोश खड़ा रह के देखता हूं, क्या मोहब्बत की मैंने? आप बनेंगे साहब, आप हमसे दोस्ताना जगाते हो, दोस्ती जताते हो, अब हमारे दोस्त हैं, जान पहचान के हैं, पड़ोस के हैं, नेबरहुड हैं, अला हैं बला हैं, पहचानते हो सब, मेरा बच्चा पानी में डूब रहा है, वो तुम्हारा बच्चा था, वो क्यों मैं खामोश हो गया? ये क्या बात हुई सर? तो मखलूक का जहन्नम में जाना बर्दाश्त न करना, पूरी मखलूक के बारे में भी ये एहसास होना कि जैसे मैं अल्लाह का बंदा बन जाऊं, मखलूक भी अल्लाह की सच्ची बंदी बन जाए, और जैसे मैं हुजूर का उम्मती हो जाऊं सच्चा पक्का, ऐसे पूरी मखलूक भी अल्लाह की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची उम्मती हो जाए, और जैसे मैं ये चाहता हूं कि मैं जन्नत में चला जाऊं, खुदा के आजाब से बच जाऊं, नाराजगी से बच जाऊं, ऐसे हर इंसान ही अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी से बच जाए, अल्लाह की जन्नत में चला जाए, और हर जिन भी जिन्हें हमसे छोटी मखलूक है हमारे ताबे, जैसे औरतें हमसे छोटी हैं हमारे ताबे, अपनी फिक्र कर ली अपने औरतों की फिक्र नहीं करे तो वो भी फिक्र में शुमार नहीं होता, वो उनसे भी छोटी चीज है, और वो मुकल्लफों में मुकल्लफ में से हैं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ भी भेजे गए हैं, अब नहीं उनसे कोई हमारा कोई नहीं है, मिलना है ना जुलना है ना जाना है ना पहचान है ना सलाम अलैकुम ना कुछ नहीं कर सकते, कैसा वो भी होता है, आदमी जब काम करने लग जाता है तो लगभग सब काम लेते हैं उससे, तो वो भी काम लेते हैं। हमारे हैदराबाद के अमीर साहब नईमुल्ला खान साहब हैं, उनकी बीवी जो है वो जब निजामुद्दीन में ठहरी हुई थी, अपना यूसुफ सर रहमतुल्लाह की बीवी जो है वो हयात थी उस वक्त, तो उन्होंने उनसे कहा कि उनको अम्मी अम्मी जान बोलते थे कि अम्मी जान हम सुने कि यहाँ पे जिन्नात भी आते हैं जमात में, सही है क्या? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि वो जो अताउल्ला तुम्हारे साथ 10 दिन की जमात में गया था ना अपनी बीवी के साथ, उन्हें क्या था? फिर बोलते बुखार आ गया। अल्लाह पाक का निजाम है, जिम्मेदारी जब उठाता है बंदा कम अल्लाह पाक लेते हैं, अब ये जरूरी थोड़ी है कि यह खाली इंसान ही बैठे हैं, फायदा दूसरे भी उठा लेते हैं, बात उनमें भी चली जाती है, ऐसा होता है। गर्ज मेरे दोस्तों ये है कि अल्लाह पाक को मानना, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, अल्लाह की बंदगी करना, अल्लाह तबारक व तआला का इल्म हासिल करना, अल्लाह तबारक व तआला की याद और जिक्र करना, अल्लाह तबारक व तआला के जो हकूक बंदों के अल्लाह ने हम पर रखे हैं उनको उनको पूरी तरह इख्तियार करना, अखलाक अपने अंदर पैदा करना, और अपने सारे अमलों का मरकज और मर्जा अल्लाह तबारक व तआला को बनाकर अखलाक बनाना, और अपनी जो कुछ भी जानो माली सलाहियतें हैं वो अल्लाह के दीन के लिए लगाना, ये हमारे फराइज में से है, जिम्मेदारी है, ये दीन की बुनियादों में से है। ये चीजें दीन जिन चीजों पर दीन खड़ा होता है उसकी जो बुनियादें हैं पिल्लर्स हैं अगर देखा जाए तो वो ये होते हैं, तहकीक करके अंदाजा लगाया गया कि ये चीजें होती हैं, तो अगर ये बुनियादें सही हो जाएंगी तो फिर पूरा दीन जो चाहता है अल्लाह पाक बंदे से वो पूरा आसानी से खड़ा हो सकता है। उसके लिए मेरे दोस्तों ये खुरूज है जिसकी तरगीब दी जाती है, जिसमें निकलना है, खुरूज को भी वाकई खुरूज बनाना है अपने हकीकत के एतबार से, और हम में से हर साथी को खुरूज करना चाहिए अल्लाह के रास्ते में, और दावत का काम करना चाहिए, दीन की मेहनत करनी चाहिए। करेंगे दोस्तों मेरे सब तैयार है उसके लिए, अल्लाह तआला सबको ज्यादा कबूल फरमाए, जो करनी है रशी बस है बस। Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.